بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت کرمانک 32, 33 اور 34 کی تلاوت اور انواد سنیں گے ایران کے پرکھیات قاری ابو القاسمی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپا شیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر کی پتنیوں، تم سامان مہلاؤں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، یدی تم اللہ کا ڈر رکھو تو کسی ویکتی سے کومل سور میں بات نہ کرو کہ وہ ویکتی جس کے من میں روگ ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور سدیو بھلی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلے اگیانتا کے کال کی بھانتی بن ٹھن کر باہر نہ نکلو۔ نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا آگیا پالن کرو۔ ہے پیغمبر کے پریجنوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس پرکار کا پوتر رکھے جس پرکار پوتر رہنے کا حق ہے۔ اور ہے پیغمبر کی پتنیوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور تتو درشتا کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو کہ نشچے ہی اللہ اتینت سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ آج بدھوار ہے، اس فن ماہ کی 25، شابان کی 13 اور مارچ کی 16 تاریخ۔ دوستوں، ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اوپرانت ہم آپ کو شرمچے پر راسائنک بمباری کی برسی پر وشیش کاریکرم سنوائیں گے، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا شوریہ گاتھا۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ شروں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیا سماچاروں کا سارانش۔ سپریم لیڈر نے پرسدھ دھرم گرو آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی کے سورگواس پر سنویدنا پرکٹ کی۔ حماس کا کہنا ہے کہ پرتیرودھ کے پھیلاؤ سے اسرائیل سنکٹ کا شکار ہو گیا۔ عام آدمی پارٹی کے نیتا بھگونت مان نے پنجاب کے 18ویں مکھیہ منتری کے روپ میں شپتھ گرہن کی۔ یوکرین جنگ، پشچمی سینکوں کی سنکھیا میں وردھی دیکھی جا رہی ہے۔ اور اب آپ وستار سے اختر عباس سے سماچار سنیے۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے اسلامی جگت کے پرسدھ دھرم گرو آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی کے سورگواس پر سنویدنا پرکٹ کی ہے۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے منگلوار کو اپنے ایک سندیش میں آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی کے ندھن پر ان کے پریجنوں، وارثوں، سہیوگیوں اور متروں کے پرتی سنویدنا پرکٹ کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی کے سورگواس پر گہرا دکھ ویکت کرتے ہوئے قم کے انتراشٹری دھارمک شکشا کیندر، آیت اللہ گرگانی کے سبھی شکشوں، ماننے والوں، ان کے تقلید کرنے والوں کے ساتھ ساتھ گلستان پرانت کی جنتا کے پرتی وشیش روپ سے اپنی سنویدنا پرکٹ کی۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے اپنے شوک سندیش میں کہا کہ سورگی آیت اللہ سید محمد علی علوی گرگانی شیعہ دھارمک شکشا کیندروں کے لیے گوروشالی دھروہر تھے، جس سے آنے والی پیڑیاں لابھانوت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ گرگانی اسلامی کرانتی کے وبھن مدوں اور دیش کے مدوں میں ہمیشہ لوگوں کے پرتی وفادار رہے ہیں اور پوتر ویوستھا کے سمرتھک رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے راشٹر کے لیے بہمولیہ سیوائیں پردان کی ہیں۔ فلسطین کے حماس آندولن کے پروکتا نے بل دے کر کہا ہے کہ پرتیرودھ کے مورچے کے وستار سے زائنی شاسن کی استھتی سنکٹمئی ہو گئی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے بدھوار کو رپورٹ دی کہ حماس آندولن کے پروکتا حازم قاسم نے پوروی نابلس پر زائونیوں کے حملے پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ اتکرمکاری زائنی شاسن پرتیرودھ کے مورچے کے وستار کے سنکٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور اسی لیے اس نے فلسطینی راشٹر کو دکھ اور درد پہنچانا شروع کر دیا ہے، لیکن وہ کدھاپی اپنے لکش میں سفل نہیں ہوگا۔ حازم قاسم نے اس بات کا الیکھ کرتے ہوئے کہ ہم نے زائن شاسن کے اندازوں کو ناکام بنا دیا، کہا کہ اتگنکاری زائن شاسن سمجھ گیا کہ اس ایتیاسک چرن میں پرتیرودھ کی اپلبدھی بڑھنے سے اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ حماس آندولن کے پروکتا نے کہا کہ غزہ اویدھ ادھیکرت کھیتروں کے فلسطینیوں کے سمرتھن کے لیے راشٹری کمیٹی کے گٹھن کی تیاری کر رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے نیتا بھگونت مان نے بدھوار کو پنجاب کے 18ویں مکھیہ منتری کے روپ میں شپتھ گرہن کر لی۔ پنجاب کے راجیہ بنواری لال پروہت نے راجیہ کے شہید بھگت سنگھ نگر ضلع میں استھت شہید بھگت سنگھ کے پیترک گاؤں کھٹکڑ کلاں میں آیوجت سماروہ میں مان کو پد اور گوپنیتا کی شپتھ دلائی۔ شپتھ گرہن سماروہ میں صرف مان نے ہی شپتھ لی۔ سماروہ میں عام آدمی پارٹی کے نو نرواچت ودھائکوں، دلی کے مکھیہ منتری و آپ کے سنیوجک اروند کیجریوال، دلی کے مکھیہ اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا، دلی سرکار کے منتری ستیندر جین اور انیہ لوگ موجود تھے۔ سبھی نے پیلے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے راشٹری سنیوجک اور دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کہا، پنجاب کا مکھیہ منتری بننے پر بھگونت مان کو بہت بہت بدھائی اور شبھ کامنائیں۔ سماروہ کے بعد 48 ورشیہ مان نے کہا کہ ان کی سرکار بے روزگاری، بھرشٹاچار اور کسانوں کی تکلیفوں کو دور کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سارا کام آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को इस्लामोफोबिया का विरोध करने वाले 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह संकल्प 193 सदस्यीय विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया और साथ ही ये प्रस्ताव मुस्लिम देशों द्वारा सह प्रायोजित धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के आधार पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ प्रस्ताव 1981 में जारी एक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसमें धर्म के कारणों से असहिष्णुता और भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव इस्लामी देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें ईरान और 5 अन्य देशों ने इस प्रस्ताव पर वार्ता का नेतृत्व किया। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन और इंडोनेशिया के साथ ईरान ने वार्ता का नेतृत्व किया और इस्लामोफोबिया से मुकाबले के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय का कहना है कि एनआरसी तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पूरे देश में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण की योजना एनआरसी तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पूरक सूची में शामिल किए गए जाने और निकाले जाने के संदर्भ में असम के लिए एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक रजिस्टर तैयार करने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। यात्रा के असम के नागरिकों की तैयार अंतिम सूची यानी अपडेटेड एनआरसी 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी जिसमें 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया था जबकि 19,06,657 लोगों को इसके योग्य नहीं माना गया था। इसके बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया था। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी पराजय के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 चुनावी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस निर्देश के कुछ ही देर बाद ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने पद से त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश चोडानकर और मणिपुर इकाई के अध्यक्ष एन लोकेन सिंह ने इस्तीफा देने को कहा गया है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने को कहा है ताकि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन किया जा सके। भारत सरकार ने बताया कि राजपथ के पास विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एनयू के पुनर्विकास पर 418.70 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए हैं। आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजपथ के पास विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 21 दिन हो चुके हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए सारे प्रतिबंधों के बाद रूस युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अमरीका ने यूरोप में सैन्य बलों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने केवल पिछले 2 महीने में यूरोप में अमेरिका की उपस्थित लगभग 80,000 सैनिकों से बढ़कर लगभग 1,00,000 हो गई है। यह लगभग उतनी है जितनी 1997 में थी जब अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों ने गठबंधन का विस्तार शुरू किया, जिसे पुतिन ने रूस के लिए खतरा बताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। रूस का कहना है कि यूक्रेन सीरिया से दाएश के आतंकियों को खरीदकर उन्हें युद्ध में रूसी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि कीव पश्चिमी देशों की मदद से दाएश समेत अन्य आतंकवादी गुटों के आतंकियों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मोर्गोलोव ने कहा कि कीव का पश्चिमी देशों की मदद से आतंकियों को सेना में शामिल करने का मामला सामने आया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय को कहीं और स्थानांतरित किए जाने की एक बार फिर मांग की है। रूस ने ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय को न्यूयॉर्क से स्थानांतरित किए जाने की मांग दोहराई है कि यूक्रेन संकट और भी गहरा हो गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को का कहना है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से संबंधित समझौते के विरुद्ध रूस सहित कुछ देशों के कूटनीतिकों के लिए अधिक समस्याएं खड़ी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मध्य दुनिया की चिंता बढ़ने वाली खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाशिंगटन ने बीजिंग को धमकी दी है कि वो रूस की किसी भी प्रकार की मदद न करे। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के मध्य अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने चीन के शीर्ष राजनयिक योंग चाइची के साथ इटली की राजधानी रोम में वार्ता की और ये उनको जानकारी दी। और इसी के साथ ये खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। राजनीतिक चर्चा। श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे भारत में हिजाब पर लगे प्रतिबंध के बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं की।
This is a commandment from Allah that Muslims girls ladies have to wear the hijab।
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम रूस के हालात पर भी एक नजर डालेंगे, जहां पश्चिमी देशों की ओर से भारी आर्थिक हमले किए जा रहे हैं। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं हिजाब के विषय से। भारत में कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने के बाद प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों और कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर मुसलमानों, विशेषकर मुसलमान महिलाओं की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कुछ मुस्लिम छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में हिजाब से संबंधित कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे कर्नाटक के सार्वजनिक संस्थानों में हिजाब पहनने वाली महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण पैदा होगा और भीड़ हिंसा बढ़ने पर उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान मुस्लिम महिलाओं को भी अपनी धार्मिक प्रथा पर अमल करने की अनुमति देता है।
This is a commandment from Allah that Muslims girls ladies have to wear the hijab. It's an essential service in Islam. It's an essential practice in Islam. Not only the two verses of the Holy Quran says, it's the 2 billion people are following the Quran.
इन महिलाओं ने कहा कि उच्च न्यायालय का ये फैसला गलत है कि हिजाब इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने का मुद्दा एक धार्मिक मुद्दा है जिसका फैसला धर्म गुरुओं को करना चाहिए, न कि न्यायालय को। महिलाओं का कहना है कि हिजाब कोई मुद्दा नहीं है और इसे कर्नाटक की भाजपा सरकार अपनी अना का मुद्दा बना रही है, जिससे मुस्लिम महिलाओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। इन पर्दापोश महिलाओं ने कहा कि हम शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के विरोधी नहीं हैं, बल्कि हम सरकार और न्यायालय से चाहते हैं कि यूनिफॉर्म में हिजाब पहनने वाली महिलाओं का भी ख्याल रखा जाए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कुरान में कई स्थानों पर पर्दे का उल्लेख किया गया है, अतः ये कहना अनुचित है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हिजाब से संबंधित कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, जो होली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उन्हें देश की शीर्ष अदालत से इस संदर्भ में न्याय मिलने की उम्मीद है। टीकाकारों का कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगने से मुस्लिम महिलाओं को अब शिक्षा प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
भारत के कर्नाटक राज्य में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले पर एक विस्तृत चर्चा सुनिए मोहम्मद मेहदी से।
हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी मंगलवार को ही दे दी गई। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसमें हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे की मांग की गई है। एक मुस्लिम छात्रा की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है, परंतु ये लड़की उन 6 याचिकाकर्ताओं में से नहीं है जिन्होंने हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर याचिका दाखिल की थी। हिंदू सेना भी हिजाब के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उसका कहना है कि शीर्ष अदालत द्वारा कोई भी आदेश देने से पहले उसकी दलील सुनी जाए। मुस्लिम छात्रा की ओर से जो याचिका दाखिल की गई उसमें कहा गया है कि हिजाब पहनने का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत आता है। हिजाब पहनने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, जीने के अधिकार और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुरक्षित है। इस्लाम के अभ्यास के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। भारतीय कानूनी प्रणाली स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रतीकों को पहनने और ले जाने को मान्यता देती है। सिखों को पगड़ी पहनने पर हेलमेट पहनने से छूट और हवाई जहाज में कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की उस रिट याचिका को खारिज कर दी जिसमें छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। 1 दर्जन मुस्लिम छात्रों सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि हिजाब पहनना भारत के संविधान और इस्लाम की आवश्यक प्रथा के तहत एक मौलिक अधिकार की गारंटी है। सुनवाई के 11 दिन बाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार के आदेश के उल्लंघन पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाए। मामले में हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले महीने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को स्कूलों कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ कर्नाटक के कई शहरों के अलावा भारत के कई बड़े नगरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। साथ ही भारत की मुसलमान छात्राओं के समर्थन में पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद हिजाब का मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट ने 10 फरवरी को शैक्षणिक संस्थानों में सभी तरह के धार्मिक वेशभूषा पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य के कई हिस्सों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं और शिक्षिकाओं को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
रूस और यूक्रेन के बीच जहां एक ओर जंग जारी है, वहीं रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से आर्थिक हमले हो रहे हैं। रूस इन हमलों के कुप्रभावों को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रयासरत है। मॉस्को से सैयद अली दारावी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध व्यापक रूप लेता जा रहा है। जहां एक ओर रूस अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का दावा कर रहा है, वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसने अब तक रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच मॉस्को के खिलाफ व्यापक अमरीकी और पश्चिमी प्रतिबंध, जिसने रूस की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को निशाना बनाया है, प्रतिबंधों की वजह से रूस में बेरोजगारी की लहर दौड़ गई है और साथ ही रूबल के मूल्य में अब तक की सबसे भारी गिरावट देखने को मिली है। इस बीच मॉस्को में कई चेन स्टोर का दौरा किया गया ताकि ये देखा जा सके कि प्रतिबंधों और रूबल के मूल्य में आई गिरावट का बुनियादी वस्तुओं पर क्या असर पड़ा है। एक रूसी महिला का कहना है कि विदेशी वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य एवं सौंदर्य संबंधित चीजें और घर की वस्तुएं महंगी हुई है, लेकिन बुनियादी वस्तुओं जैसे खाने पीने की चीजों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक रूसी नागरिक का कहना है कि जहां तक मैं देख रहा हूं, खाने पीने की चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं। एक अन्य रूसी महिला का कहना है कि कीमतों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति में कि जब पिछले 3 हफ्तों के दौरान रूस की राष्ट्रीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा के मुकाबले में आधी से भी कम कीमत रह गई है, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों की जरूरतों के सामानों के मूल्यों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। चीजों की कीमत रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले से पहले ही वाली कीमत है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण राज है। वो राज ये है कि पूरे रूस विशेषकर मास्को में लगभग 300 चैन स्टोर्स हैं कि जहां आम लोगों की जरूरतों के सामान मिलते हैं। साथ ही इस देश की सरकार कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए सरकारी अधिकारी बाजार में बिकने वाले बुनियादी सामानों की कीमतों पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। स्टोर मालिकों को इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं होती है कि वो विदेशी मुद्रा के अनुसार वस्तुओं की कीमतों को कम या ज्यादा करें। यही कारण है कि युद्ध की स्थिति में भी रूस में महंगाई की मार देखने को नहीं मिल रही है। मास्को से IRIB के लिए सैयद अली दाराबी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हलबचा शहर पर केमिकल बमबारी की बरसी के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम शौर्य गाथा।
दोस्तों, 16 मार्च को बासी शासन द्वारा हलबचे शहर पर की गई बमबारी की हृदय विदारक घटना की वर्षगांठ पर हमारे द्वारा पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ईरानी कैलेंडर के 12वें महीने इस्वन की 25 तारीख अर्थात 16 मार्च वर्ष 1988 ईरान के इतिहास का एक ऐसा काला दिन है कि जब इराक की बासी सरकार ने दसियों लड़ाकू विमानों के जरिए इस देश के पूर्वोत्तरी नगर हलबचे पर रासायनिक बमबारी कर दी। यह बमबारी ऐसी स्थिति में आरंभ हुई कि जब एक ओर इराकी सरकार ईरानी जियालों और इराकी कुर्दों के संघर्ष से कठिनाइयों में फंस चुकी थी और दूसरी ओर हलबचे की मुसलमान जनता ने ईरानियों का भव्य हार्दिक स्वागत किया था, जिससे क्रोधित होकर बासी सरकार ने ये बमबारी करवाई। इस बमबारी में 5,000 से अधिक लोग विषैली गैसों का शिकार होकर मर गए, किंतु पश्चिमी सरकारें इस पर चुप्पी साधे रहीं, जिन्होंने रासायनिक हथियार बनाने की तकनीक इराक को दी थी। हलबचे पर रासायनिक बमबारी 5 घंटों तक जारी रही। इस घटना को कवर करने वाले पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने पूरे जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी थी। हर ओर मौत का सन्नाटा था, पूरा शहर मौत की नींद सो गया था, कोई भी इस शहर में जाने का साहस जुटा नहीं पा रहा था।
हलबचे शहर पर हुआ रासायनिक हमला इराक के तानाशाह सद्दाम की सेना द्वारा चलाए जा रहे अनफाल ऑपरेशन का हिस्सा था। बासी सेना का यह सैन्य ऑपरेशन इराक के ज्यादातर कुर्द बहुल प्रांतों में था, जिसमें करकुक, दियाला, नैनवा और सलाहुद्दीन प्रांत शामिल थे। इराक के बासी शासन द्वारा किए जाने वाले रासायनिक हमलों की कमांड तानाशाह सद्दाम के सबसे भरोसेमंद सैन्य अधिकारी अली हसन मजीद के हाथों में थी। अली हसन मजीद अली शीमियाई के नाम से भी मशहूर थे। बताया जाता है कि अली हसन मजीद इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम के चचेरे भाई थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना द्वारा पवित्र प्रतिरक्षा के समय चलाए गए सैन्य ऑपरेशन में से एक सैन्य अभियान वल्फज्र 10 था। वल्फज्र 10 सैन्य ऑपरेशन के तहत ईरानी सेना द्वारा चलाए गए अभियान में इराक के कुर्दिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरानी सेना के नियंत्रण में आ गया था। ईरानी सेना के नियंत्रण में आए कुर्दिस्तान इलाके की जनता ने ईरान की सेना का भव्य तरीके से स्वागत किया। ये सब दृश्य ऐसे थे कि जिसने इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम को क्रोधित कर दिया था। सद्दाम कुर्द जनता द्वारा ईरानी सेना के किए गए भव्य स्वागत से इतना ज्यादा आक्रोशित हुआ कि वो अपने कमांडरों और जनरलों पर चीखने और चिल्लाने लगा। इराकी सेना के कुछ पूर्व कमांडरों ने उस समय के बारे में बताया है कि कुर्द इलाकों में जनता द्वारा ईरानी सेना के स्वागत की घटना ने सद्दाम को पागलपन की हद तक आक्रोशित कर दिया था। यही कारण था कि सद्दाम ने इन इलाकों पर केमिकल हमले का आदेश जारी कर दिया।
हलबचे से पहले सद्दाम के शासन ने 28 जून 1987 को ईरानी सीमावर्ती शहर सरदश्त को रासायनिक हथियारों से निशाना बनाया था। इस हमले में भी बड़ी संख्या में आम नागरिक शहीद हुए थे। बासी शासन द्वारा सरदश्त पर किए गए रासायनिक हमले में 8,000 लोग जहरीली गैसों के संपर्क में आए और वो उससे बुरी तरह प्रभावित हो गए। केमिकल हमले के प्रभावित लोग आज भी अपने जीवन में कई तरह की शारीरिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस अपराध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी ने सद्दाम के शासन को सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग जारी रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद से सद्दाम ने ईरान के विभिन्न हिस्सों और इराक के कुर्द क्षेत्रों पर लगातार केमिकल हमले किए। वर्ष 1980 के अंतिम महीनों में इराक के बासी शासन ने संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस सहित कुछ अन्य देशों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सीधी मदद से विनाशकारी केमिकल हथियार बनाने और उन्हें खरीदने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। रासायनिक हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां जैसे कृषि कीटनाशकों, कीड़े मकोड़ों को मारने वाले पदार्थों और रासायनिक उर्वरकों जैसे भ्रामक कीटनाशकों की आड़ में कच्चे माल को इराक तक पश्चिमी देशों की कंपनियों की मदद से पहुंचाया गया। साथ ही सद्दाम द्वारा केमिकल हथियारों के निर्माण में अमेरिका और पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने हर तरह की सहायता दी। यही कारण है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रासायनिक हथियारों से हमला करने पर इराक के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने जा रहा था, तभी इन्हीं देशों ने सुरक्षा परिषद को बयान जारी करने से रोक दिया था।
हलबचे पर हुए केमिकल हमले के लगभग 50 दिनों बाद तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मानवता विरोध हमले के खिलाफ न केवल कोई स्टैंड नहीं लिया बल्कि सद्दाम शासन को इन हमलों के लिए दोषी मानने से भी बचता नजर आया। रासायनिक हथियार कन्वेंशन के तहत रासायनिक हथियारों का उपयोग प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन जिनेवा कन्वेंशन में हुआ। इस कन्वेंशन में युद्ध में ऐसे पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए लिखा गया है जो घुटन और विषाक्तता का कारण बनते हैं। साथ ही साथ अन्य सभी ऐसी गैस की जो इस श्रेणी में आती हैं, वर्ष 1925 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की गई और 8 फरवरी 1988 को लागू हुआ। इसी तरह नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल 1964 के कानून के अनुच्छेद के 6 के तहत 1922 के वाशिंगटन कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 और रासायनिक हथियारों के निषेध पर कन्वेंशनों के प्रस्तावों के तहत सभी विनाशकारी हथियारों का प्रयोग प्रतिबंधित है। हालांकि इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बावजूद नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस की कंपनियों सहित यूरोपीय कंपनियों ने ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के दौरान इराक के बासी शासन को विनाशकारी और रासायनिक हथियारों को बेचा। दस्तावेज बताते हैं कि ईरान के साथ युद्ध में सद्दाम द्वारा सरीन गैस, नर्व गैस और मस्टर्ड गैस सहित रासायनिक हथियारों के उपयोग के बारे में न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका अवगत था, बल्कि संबंध में उसने इराकी सेना को तकनीकी और खुफिया सहायता भी प्रदान की थी।
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने 26 अगस्त वर्ष 2013 को ऐसे बहुत से दस्तावेजों और साक्ष्यों से पर्दा उठाया था कि जिसके जरिए यह साबित होता है कि अमेरिका ने इराकी कुर्दिस्तान में ईरान पर इराक द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के अंतिम महीनों में बासी शासन द्वारा अंजाम दी गई विनाशकारी कार्रवाइयों में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई थी। फॉरेन पॉलिसी द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्टों के मुताबिक वर्ष 1988 में अमरीकी अधिकारियों ने यह दावा किया था कि इराक की रक्षा दीवारों में पड़ी दरार का उपयोग करके ईरान युद्ध में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जीत के कगार पर है।
इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय अमरीकी सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ईरानी सेना को रोकने के लिए सद्दाम की सेना रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगी। साथ ही अमेरिका ने ही इराकियों को ईरानी बलों के स्थान के बारे में जानकारियां मुहैया कराई थी। इस बारे में बेल्जियम के गॉन फ्लैंडर्स अस्पताल में विश्व विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख प्रोफेसर ओबेन हैंड्रिक्स कहते हैं कि इराक में बासी शासन ने 3 अलग अलग प्रकार की गैस से बने हुए केमिकल हथियारों का प्रयोग किया था। इनमें मस्टर्ड गैस, तंत्रिका गैस VX और साइनोजिन गैस शामिल थी। इसलिए ये कहा जाना चाहिए कि हलबचे के कुर्द लोगों की मौत मस्टर्ड के स्वाद के साथ और तबून और सरीन नर्व गैस के तीखे मसाले और साइनोजिन की घातक गंध के साथ हुई थी।
समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने भी 30 दिसंबर 2002 को इराक पर अमरीकी हमले से 3 महीने पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिस रिपोर्ट में आया था कि दस्तावेजों से ये संकेत मिलता है कि रोनाल्ड रीगन प्रशासन और तत्कालीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर सद्दाम के शासन को जहरीले रसायन और घातक जैविक वायरस बेचने पर सहमत हुए थे। सद्दाम ने ईरान के सरदश्त और हलबचे शहरों पर रासायनिक हमले के बाद ईरानी राष्ट्र को ये धमकी भी दी थी कि वो अन्य शहरों पर भी रासायनिक हथियारों से बमबारी करेगा। हालांकि ईरान पर इराक द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध की शुरुआत के बाद से हलबचे पर हुआ रासायनिक हमला अपनी तरह का पहला हमला नहीं था, लेकिन यह पहली बार था कि जब सद्दाम ने इस तरह के रासायनिक हमले ना ईरानी सैनिकों पर और ना ही ईरानी नागरिकों के खिलाफ किया था, बल्कि उसने अपने ही देश के अंदर इराकी नागरिकों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था।
सद्दाम ने इराक के इतिहास का सबसे भयानक और अमानवीय अपराधों में से एक अपराध को अंजाम दिया था। इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामेनेई इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम द्वारा किए गए रासायनिक हमलों की त्रासदी के बारे में कहते हैं कि सद्दाम ने ऐसा किया, लेकिन सद्दाम के पीछे कौन था? वे अमरीकी थे, वे पश्चिमी थे, वे सभी थे कि जिन्होंने उसे रासायनिक बम दिए थे। उन्होंने उसे हरी झंडी भी दी और इस जघन्य अपराध और मानवीय नरसंहार के सामने छुपी भी सादे रहे।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता।
ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। शौर्य गाथा।
प्रिय श्रोतागण, शौर्य गाथा की कन्ने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में जिनेवा में ईरान और इराक के बीच लगभग 1.5 साल तक बेनतीजा वार्ता हुई। इसके बाद सद्दाम ने ईरान को पत्र लिखे।
दोस्तों, इन 5 पत्रों में सद्दाम ने विरोधाभास से काम लिया था और कोशिश की थी कि 8 साल तक चले युद्ध में वो जो हासिल नहीं कर सका था धोखे और चालबाजी से उसे हासिल करे। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने सद्दाम के 5वें खत के जवाब में एक केंद्रीय बिंदु पर जोर दिया कि 1975 के अल्जीरिया समझौते को ही आधार बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इराकी सेना की वापसी की स्थिति में ही शांति समझौता हो सकता है। इस पत्राचार के दौरान सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराक के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा था, इसीलिए उसे बहुत ज़रूरत थी कि ईरान के साथ अनाक्रमक संधि हो जाए ताकि वो पूरी तवज्जो से कुवैत की जंग लड़ सके। बगदाद के तानाशाह के पास ईरान की मांग स्वीकार करते हुए 1975 के अल्जीरिया समझौते को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये वही समझौता था जिसे सितंबर 1980 में सद्दाम ने टीवी कैमरे के सामने फाड़ा था और ईरान पर जमीन, हवा और समुद्र से हमले शुरू कर दिए थे। ईरान के राष्ट्रपति और सद्दाम के बीच लगभग 3 महीने तक पत्रों का आदान प्रदान हुआ। आखिरकार सद्दाम ने ईरान की मांग स्वीकार की और 14 अगस्त 1990 को अपने आखिरी खत में शांति के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार किया। सद्दाम ने अपने 6वें और आखिरी खत के पहले भाग में अल्जीरिया समझौते को स्वीकार किया था। इसी पत्र के 3रे भाग में आया है कि हम अपनी सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया 17 अगस्त 1990 से शुरू करेंगे। पत्र के 4थे अनुच्छेद में लिखा था कि हम कैदियों की रिहाई की शुरुआत करने वाले के तौर पर 17 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू करेंगे।
चौदह अगस्त 1990 का दिन ईरान के इतिहास में बहुत बड़ा है। 8 वर्षीय युद्ध में इस दिन ईरान की सफलताओं को मान्यता मिली। इस दिन बगदाद के तानाशाह सद्दाम के हस्ताक्षर के साथ ईरान को एक पत्र लिखा गया जिसमें यह वाक्य थे, राष्ट्रपति इस्लामी गणतंत्र ईरान श्रीमान हाशिमी रफसंजानी, हमारे इस फैसले के बाद हर चीज स्पष्ट हो गई। इस तरह वह सब कुछ हो गया जो आप चाहते थे, जिस पर आप जोर देते थे। अब दस्तावेजों की लेन देन के अलावा कुछ बाकी नहीं रह गया है। ईरानी जनता का 8 वर्षीय प्रतिरोध सद्दाम को आखिरकार झुकाने में कामयाब रहा। सद्दाम जिसने 10 साल पहले ईरान पर हमला किया था, अब वही सद्दाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करता है 1975 के अल्जीरिया समझौते को स्वीकार करने सहित ईरान की सारी मांगे मानता है। सेनाओं की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वापसी, सारे कैदियों की बिना शर्त वापसी, प्रस्ताव 598 पर पूरी तरह अमल, वह मांगे थी जो ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में होने वाली शांति वार्ता में रखी थी। सद्दाम के आखिरी खत के बाद 18 अगस्त 1990 को ईरान के राष्ट्रपति ने अपने चौथे और आखिरी जवाबी खत में लिखा कि आपकी ओर से अल्जीरिया समझौते को दोबारा स्वीकार करने के ऐलान के बाद सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 के आधार पर संघर्ष विराम को स्थायी शांति में बदलने का रास्ता साफ हो गया है। ईरान के इलाकों से अगर आपकी सेना पीछे हटती है तो इसे हम शांति समझौते के पालन में आपकी गंभीरता का चिन्ह मानेंगे। अब हम तेहरान में आपके प्रतिनिधि से मुलाकात के लिए तैयार हैं ताकि दोनों इस्लामी देशों के अधिकारों की रक्षा के साथ एक समग्र शांति की स्थापना हो सके।
दोस्तों, 1975 का समझौता सद्दाम की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद सद्दाम ने सद्भावना साबित करने के लिए 17 अगस्त 1990 को अपनी सारी सेनाएं ईरान के इलाकों से वापस बुला ली। केवल सांकेतिक रूप से एक सैनिक रह गया जो आम हालात में रोजाना के कामों के लिए होता है, उसके अलावा सारे सैनिक लौट गए। सद्दाम ने यह भी स्वीकार किया कि इसी दिन सारे जंगी कैदियों का आदान प्रदान खानकैन कसर शीरी सीमा से शुरू हो जाएगा। इस समझौते के आधार पर 5 दिन के भीतर 21 अगस्त 1990 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में इराकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वापसी की।
ईरान और इराक में ये हालात पैदा हो गए और सद्दाम अपने पुराने स्टैंड से पीछे हटा तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर व्यापक रूप से चर्चा में आई। अमरीकियों ने जो कुवैत पर इराक के हमले के बाद इराक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में व्यस्त थे, बिल्कुल प्रतिक्रिया दिखाई। बुश सीनियर ने जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे अपने भाषण में कहा था कि इराक का ईरान की सारी शर्तें मान लेना मेरे लिए बहुत हैरत की बात है। वर्तमान हालात में इस समझौते का पूर्वानुमान मेरे लिए संभव नहीं है। कुवैत और सऊदी अरब चूंकि प्रत्यक्ष रूप से इराक के निशाने पर थे, इसलिए इस बारे में उनका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण था। इन देशों ने 8 वर्षीय युद्ध में ईरान के खिलाफ इराक की हर तरह की आर्थिक, सामरिक और इंटेलिजेंस मदद की। उन्होंने सद्दाम को हमले के लिए अपने इलाके भी दिए थे। अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 8 वर्षीय युद्ध के दौरान इराक सऊदी अरब पर बार बार जोर दे रहा था कि वह अमेरिका और अन्य देशों को मदद के लिए तैयार करे। प्रिंस बंदर ने सद्दाम के अमेरिकी विरोधी नारों का मजाक उड़ाया और कहा कि हकीकत यह है कि अगर हम न होते तो इराक को ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी और अन्य देशों की सैनिकों की कोई मदद न मिल पाती। सऊदी अरब के गृहमंत्री नाइफ बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि हमारे विचार में ईरान जो चाह रहा था वह पूरा हो गया। कुवैत के अधिकारियों के बयानों में अधिक शर्मिंदगी और पछतावा था। वह भी इराक के बयानों का खंडन करते थे और साथ ही कुछ मुद्दों को उठाते थे। वाशिंगटन में कुवैत के राजदूत मसूद नासिर अल सबा ने इराकी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए क्षमता से अधिक तेल के उत्पादन का उल्लेख किया था। कुवैती राजदूत ने एक अन्य बयान में इराक को दी जाने वाली मदद का उल्लेख करते हुए 30 अरब डॉलर की सहायता की बात कही थी। कुवैत पर सद्दाम के हमले से अरब नेताओं का सिर शर्म से झुक गया था। जब सद्दाम 1975 के अल्जीरिया समझौते को स्वीकार करके पीछे हटा तो इस्लामी गणतंत्र ईरान से दुश्मनी रखने वाली सरकारों के मुंह पर तमाचा पड़ा।
दोस्तों, सद्दाम ने 1975 के समझौते को स्वीकार करने के बाद खतों में जिन बातों पर प्रतिबद्धता की थी उन पर अमल किया। जंग खत्म होने और ईरानी इलाकों से इराकी सेनाओं के बाहर निकलने के लगभग 2 साल बाद 17 अगस्त 1990 को 1000 ایرانی جنگی قیدیوں کا پہلا گروپ خسروی بارڈر سے ایران لوٹا. اس کے ایک دن بعد اسی سنکھیا میں عراقی قیدیوں کا ایک سموہ ایران سے چھٹ کر عراق پہنچا. اس طرح دونوں دیشوں کے قیدی چھوٹ کر اپنے اپنے گھر پہنچے. ستمبر 1990 تک دونوں دیشوں کے 40,000 قیدی رہا ہو کر اپنے گھر بار پہنچ چکے تھے.
کویت پر صدام کے حملے سے پہلے ایران اور عراق کے بیچ وارتا سنیکت راشتر سنگھ کے پرتینیدیوں کی مدستہ میں یا ایران اور عراق کے پرتینیدیوں کی پرتیش اپستیتی سے جنیوا میں ہو رہے تھے. لیکن عراق کے ودیش منتری طارق عزیز اور اس دیش کے تیل منتری نے 9 ستمبر 1990 کو تہران کا سفر کیا اور ایران کے راشپتی اور ودیش منتری سے ملاقات کی, اور ایران کے ودیش منتری نے 14 نومبر 1990 کو بغداد کا سفر کیا اور صدام سے ملاقات کی, جس کے بعد 1990 کے پت جھڑ سے دونوں دیشوں کے بیچ اعلانیہ وارتا شروع ہو گئی جو اس سے پہلے تک خفیہ تھی.
اکتوبر 1990 میں دونوں دیشوں کے دوتاواس کھل گئے اور پربھاری راجدوت کے استر پر کوٹنیتک سمبند بحال ہو گئے. دونوں دیشوں کے سمبندوں کے سامانیکرن کی پرکریا کے تحت 8 جنوری 1991 کو صدام کے قریبی سہیوگی عزت ابراہیم الدوری نے ایک پرتندھی منڈل کے ساتھ ایران کی یاترا کی. کویت پر حملے کے بعد صدام پر اس کے ان گھٹکوں کی اور سے بھاری دباؤ تھا جو 1980 کے شروع ہونے والے یدھ میں صدام کا ساتھ دے رہے تھے. اسی لیے صدام کی کوشش تھی کہ ایران سے سمبند اچھے ہو جائیں. ورش 1991 میں عراقی جنتا کے آندولن کے سمے ایران اور عراق کی وارتا رک گئی اور آندولن کاریوں کے بھیانک دمن کے بعد دونوں دیشوں کے سمبندوں میں گتی رود آ گیا.
شروتاگن, اگلے کارکرم میں ہم پرستاو 598 کے اس انوچھید کے بارے میں بات کریں گے جس میں صدام کو حملہور کہا گیا ہے. تب تک ہمیں انمتی دیں.
دوستوں, آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور پرستوت ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش. سپریم لیڈر نے پرسدھ دھرم گرو آیت اللہ سید محمد علی الوی گرگانی کے سورگواس پر سنویدنا پرکٹ کی. حماس کا کہنا ہے کہ پرتیرودھ کے پھیلاؤ سے اسرائیل سنکٹ کا شکار ہو گیا ہے. عام آدمی پارٹی کے نیتا بھگوانت مان نے پنجاب کے 18ویں مکھیہ منتری کے روپ میں شپتھ گرہن کی اور یوکرین جنگ پشچمی سینکوں کی سنکھیا میں وردھی ہو رہی ہے. دوستوں, ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.